ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे मत्तो यार दिव्यध्वनियु लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की यह संसारी जीव चतुर्गति में भटकता भटकता अनेक योनियों को प्राप्त होता है वहाँ जन्म लेता है शरीर पाता है शरीर में इंद्रियों को पा लेता है उन इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करता है विषयों के ग्रहण में ग्रहण के काल में हर्ष विषाद इत्यादि भावों को करते हुए शुभाशुभ कर्मों का बंद करता है कर्मों के बंद के पश्चात पुनः योनि में ही जन्म लेने के लिए तैयारी भी कर लेता है इस प्रकार से इसकी तैयारी अनादिकाल से संसार में भटकने की ही होती चली आ रही है अब एक बार यह तैयारी न हो ये सोचना है और इस तैयारी से हम बच गए तो दूसरी तरफ की तैयारी से हम तैयार रहें तैयारी तो करना है किसकी तैयारी करनी है इसी को सोचना है और आगे कदम बढ़ाना है यह चार्ट जो लग रहा है आत्मकल्याण हेतु अपनी आत्मा को दर दर भटकते हुए चतुर्गति में सुख दुखों का अनुभव करते हुए इस आत्मा को कैसे हम बाहर निकालें कैसे निकाला जा सकता है इसी बात को टारगेट में रखकर हम पढ़ रहे हैं संसार से मुक्त होना है वही लक्ष्य है तो हम जब संगी पंचेंद्री गर्भज संख्यात वर्षायुष्क अवस्था में थे वहाँ पर भी जन्म मरण सुख दुख सब प्रकार की यातनाएं संसार की थी वहाँ से मरण किए तो सम्यक दर्शन के बिना मरण किए मिथ्या तो गुणस्थान में मरण किए फलस्वरूप हमारे लिए कौन कौन से द्वार खुले थे जाने के लिए उस आत्मकथा को हमने कल समझा था हमारी आत्मा ने सभी नरकों में जाने के मार्ग को खुला रखा था तिर्यंच गति में सभी कर्म भूमि के तिर्यंच पर्यायों में जन्म लेने के मार्ग को खुला रखा था असंख्यात वर्षायुष्क जिसको भोग भूमि कहते हैं वहाँ के तिर्यंच पर्याय को भी धारण करने के लिए शक्ति को जुटा करके जन्म लिया था मनुष्य गति में भी कर्म भूमि का मनुष्य भी बन सकता था समूर्छन मनुष्य गर्भज मनुष्य और असंख्यात वर्षायुष कर भोग भूमि का मनुष्य भी बन सकता था। ऐसे मनुष्य गति के सारी मनुष्य पर्याय के द्वार खुले थे। भवनत्रिक में भी हम जा सकते थे क्योंकि पहले गुणस्थान में मरण करने वाले रहे। इस प्रकार से हम संघी पंचेंद्री गर्भज पर्याय से कहाँ कहाँ जा सकते थे। हमारी आत्मकथा को चतुर्थ काल में भगवान ने पहले से ही बताया था। संघी पंचेंद्री समूर्छन को साथ में लेकर संघी पंचेंद्री गर्भज हमारी आत्मा को भी साथ में लेकर कथन किया था। समूर्छन संघी पंचेंद्री संख्यात वर्षायुष आयु वाला तिरंश भी वहीं जा सकता है जहां पर संघी पंचेंद्री गर्भज जा सकता है, क्योंकि दोनों संघी पंचेंद्री जीव है ना। तो हमारे साथ हमारी आत्मकथा को हम देखते हुए दूसरे के आत्मकथा को भी हम देखें तो हमारे साथ कोई समूर्छन संघी पंचेंद्री जीव भी रहा होगा, तभी भगवान ने बताया। और दोनों के लिए इतने इतने द्वार खुले हैं ऐसा व्याख्यान किया, और उनमें से एक न एक पर्याय में हम गए होंगे। और ऐसे हम दोनों मिलकर के जहाँ गए थे वही आत्मकथा यहाँ सुनाई जा रही। अब ऐसा नहीं जाना है हमें, तिरंश गति में जाकर तिरंश पर्याय में नहीं भटकना है, न देवगति में जाना है, न मनुष्य बनना है, न नरक जाना है। हमें कहाँ जाना है, हमारी पर्याय टारगेट पर्याय कौन सी है? हमको मोक्ष जाना है। मोक्ष जाने के लिए हम समस्त अपेक्षाओं से रहित रहें, यह हमारी साधना है। टारगेट मोक्ष पर्याय है, अपेक्षा रहित होना हमारी सर्वोच्च साधना है। जीव जीवन जीता है अपेक्षा के साथ, जीवन जीने की एक आदत पड़ी हुई है, इस आदत को कम करना है, समाप्त करना है। तो आत्मा इस संसार के परिभ्रमण से बच सकती है। कल दो जीवों की बात चली थी, संगी पंचेंद्री गर्भज पर्याप्तक और संगी पंचेंद्री पर्याप्तक सम्मूर्छन। ये जीव नरक गति में सभी नरकों में जाते हैं, तिरंश गति में कर्म भूमि के सब प्रकार के तिरंशों में पैदा हो सकते हैं, और भोग भूमि में तिरंश बन करके भी, ये तिरंश पर्याय से तिरंश बन करके भी उत्पन्न हो सकते हैं। मनुष्य गति के सभी मनुष्यों में, कर्म भूमि के मनुष्यों में उत्पन्न हो सकते हैं, और गर्भज मनुष्य जो कि भोग भूमि के होते हैं असंख्यात वर्षायुषकों में भी उनका जन्म हो सकता है। किंतु प्रथम गुणस्थान में मरण हो रहा है, इसलिए देवगति में तो भवनत्रिक से 12वें स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। अब तिरंश पर्यायों में संघी पंचेंद्री तिरंश का कथन करके असंघी पंचेंद्री दो प्रकार के जीव होते हैं, असंघी पंचेंद्री गर्भज पर्याप्तक संख्यात वर्षायुष्क जीव और असंघी पंचेंद्री पर्याप्तक सम्मूर्छन संख्यात वर्षायुष्क जीव। यहाँ संख्यात वर्षायुष्कों को ही लिया है क्योंकि असंघी पंचेंद्री भोग भूमि में होते नहीं हैं, इसलिए कर्म भूमि का ही कथन यहाँ पर संदर्भित है। असंघी पंचेंद्री में गर्भज जीव भी होते हैं और सम्मूर्छन जीव भी होते हैं, और ये पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं, किंतु यहाँ पर पर्याप्तक असंगी पंचेंद्री सम्मूर्छन और गर्भज का कथन है, अपर्याप्त का कथन नीचे है आठवें में। ये जीव असंगी है तो इसका कौन सा गुणस्थान होगा? मिथ्यात्व गुणस्थान ही होगा। असंगी जीव को एक से ज्यादा गुणस्थान नहीं होते। क्या कारण है? क्योंकि ये नियम है, ये कलम लागू होता है यहाँ कि सम्यक दर्शन संगी पंचेंद्री जीव को ही उत्पन्न होता है। इस कलम के अनुसार असंगी जीव प्रथम गुणस्थान में रहता है, है ना? कलम लागू होता ही है कभी। हाँ, तो कहाँ कहाँ जाता है देखेंगे। असंगी जीव गर्भज हो चाहे समूर्छन हो, दोनों पर्याप्तक हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? पहले गुणस्थान में मरण कर नरक में जाएंगे तो अधिक से अधिक प्रथम नरक तक ही जा सकते हैं। सात नरक हैं, दूसरे आदि नरकों से लेकर सातवें नरक तक नियम से संगी पंचेंद्री जीव ही जाते हैं। असंगी पंचेंद्री को दूसरे आदि नरकों में जाने की कैपेसिटी नहीं है, यानी इतना बड़ा पाप कर्म वह नहीं कर सकता। इससे सोचो, जरा सोचने के लिए यहाँ विषय मिल जाता है। मन से पाप ज्यादा होता है क्या? मन रहित जीव को पाप ज्यादा होता है? संगी पंचेंद्री बने तो सातवें नरक तक जा सकते हैं, और असंगी बने तो हजार कोशिश करें, करोड़ कोशिश करें तो भी हम पहले नरक से नीचे के नरकों में नहीं जाते। इससे ज्ञात होता है जीव पाप जो करता है ना, मन से ही ज्यादा करता है, तन से बहुत कम करता है। तन से बहुत कम पाप होता है, वचन से भी बहुत कम पाप होता है, मन से ज्यादा होता है। मन से पाप करने के लिए कहीं हिलना डुलना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता। मन से पाप करने के लिए तो बैठे बैठे दूसरे के संबंध में बुरा सोचो, बन गया काम। बैठे बैठे ही सातवें नरक का रिजर्वेशन हो सकता है, भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं। और वो असंगी पंचेंद्रिय मन रहित है, वो भागा दौड़ी करके पाप करता है, वो भागता है, मन है ही नहीं, तो भागने से कितना पाप हुआ? ज्यादा से ज्यादा पहले नरक तक जाने का, किंतु बैठे बैठे कितना कर सकते हम? इसलिए मन को संभालो ये कहा है। हमें सबसे ज्यादा किसको संभालने का पुरुषार्थ करना चाहिए? मन को संभालना चाहिए। मन सदा ही विषमता में रहता है, अनुकूल परिस्थिति आ गई तो फूल जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो मुरझा जाता है। और इसी दौरान इसी समय में कर्म का बंद पड़ जाता है। हर्ष विषाद ये जो चलता है ये मन के द्वारा ही होता है। ज्यादा से ज्यादा मन के पास बहुत पावर है, और यह पावर मन के पास जो आता है वह आत्मा के कारण से आता है। मन तो एक माध्यम है, आत्मा शक्तिशाली है। आत्मा की इस शक्ति को प्रकट करने के लिए पांच इंद्रियां और एक मन मिलता है। इन छह के माध्यम से आत्मशक्ति को हम बाहर फेंकते हैं, फेंकते समय हर्ष विषाद राग द्वेष इत्यादि भी करते हैं, उसी समय हमें शुभाशुभ कर्मों का बंध भी होता है और उस कर्म के आधार से हमारा रिजर्वेशन होता है आगे का, कहाँ जाना, गाड़ी रिजर्वेशन, कोल्हापुर से दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, हाँ, एक संसार में जाता है, एक मोक्ष के लिए जाता है, मोक्ष का भी रास्ता है, संसार में चार मार्ग निकले हैं चतुर्गति के और पांचवा रास्ता तो ऊपर है, मोक्ष के लिए जाता है, पर यह मार्ग का टिकट बहुत महंगा है। असंगी पंचेंद्री, स्वर्ग में आज तक एक भी असंगी पंचेंद्री जीव नहीं गया। देखो वहां पर क्या लिखा है, स्वर्ग में जाता है नहीं, कहाँ जा रहा है, हाँ, इसमें दो उल्लेख मिलते हैं शास्त्रों में अलग अलग, थोड़ी सी मान्यता दृष्टि भेद है। एक शास्त्र का कहना है कि ये भवनवासी देव बन सकता है बस, और दूसरा शास्त्र का उल्लेख है व्यंतर पर्याय में जा सकता है, भवन व व्यंतर में, किंतु भवनत्रिक में जा सकता है ऐसा भी उल्लेख है। तिलोत्पन्नति के आधार से यदि इसको देखें तो भवनत्रिक में जाता है, और अन्य ग्रंथांतर से देखें तो ये भवनवासी बन सकता है और व्यंतरवासी बन सकता है, बस दो पर्याय, एक छूट गई, ज्योतिष पर्याय में नहीं जाता, ज्योतिषी देव ऊपर रहते हैं, इतना ऊपर भी नहीं उठ सकता, स्वर्ग जाने के लिए तो बहुत ऊपर उठना पड़ेगा, मध्य लोक को पार करना पड़ेगा, मध्य लोक की सीमा कितनी है, जितना सुमेरु पर्वत है उतना। स्वर्ग में जन्म लेने के लिए संगी पंचेंद्री ही होना पड़ता है, या ज्योतिषी देव बनने के लिए संगी पंचेंद्री जीव ही होना पड़ता है, एक मत। दूसरा मत है कि भवनत्रिक में जा सकते हैं किंतु स्वर्ग में नहीं जा सकते। दोनों मतों में ये कहा है कि स्वर्ग में पैदा नहीं हो सकते, पर मतभेद किस में है, भवनत्रिक में। एक मत यह है कि भवनवासी और व्यंतरवासी बन सकता है, एक मत यह है कि ज्योतिषी भी बन सकता है, पर स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता असंगी पंचेंद्री जीव। यहां से मन की महिमा कितनी है ये पता चलता है। सातवें नरक जाओ तो मन चाहिए, सर्वार सिद्धि जाओ तो मन चाहिए, मोक्ष जाओ तो मन चाहिए। मनोबल बहुत महत्वपूर्ण है, उसका हम सदुपयोग करें तो सदुपयोग है, दुरुपयोग करें तो दुरुपयोग भी है। करंट है, बिजली है, इसका सदुपयोग भी हो सकता है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। दुरुपयोग करना हो तो पकड़ लो उसको, दुरुपयोग हो जाएगा, और सदुपयोग करना है, प्रकाश पाओ और पढ़ने के स्वाध्याय के लिए बैठ जाओ, मोक्ष जाओगे, शुभ कर्म का बंध होगा, हित होगा, आत्मा का कल्याण होगा। कोई भी वस्तु दुनिया की, उसमें दो प्रकार की शक्ति होती है, हित करने की भी और अहित करने की भी। हर चीज, कौन सी चीज ऐसा है जो हित ही करता है लेकिन अहित नहीं करता, उसका नाम बता दो एकाध का। कोई वस्तु है ऐसी, केवल हित ही करता है और अहित नहीं करता, ऐसी संसारिक कोई एक वस्तु, भौतिक वस्तु ऐसी कोई वस्तु है क्या? कोई भी नहीं है। किसका नाम लेओगे बता? जहर का नाम लेओगे तो भी बैठता नहीं, अमृत का नाम लेओगे तो भी नहीं बैठता। जहर का नाम लेओगे तो जहर से व्यक्ति को बचाया भी जा सकता है और मारा भी जा सकता है। अमृत का नाम लेओगे तो अमृत बचाता भी है, लेकिन बचा करके पूर्णतः नहीं बचाता संसार से, संसार में ही रखता है, संसार के दुखों में ही रखता है, इंद्रिय सुखों में रखने तक का काम कर सकता है, अहित तो है। अमृत के सहारे से भी कब तक रहोगे? अमृत का सेवन करने वाला जीव मोक्ष नहीं जाता, ये निश्चित है ना, नुकसान तो है। मोक्ष जाने वाला जीव अमृत का भी त्याग करता है। देवलोक त्याग नहीं कर सकते अमृत का, इसलिए मोक्ष नहीं जाते। मनुष्य अमृत का भी त्याग कर सकता, अमृत मिले तो उसको बहुत ऊंचा वो नहीं समझता कि मिल गया है तो सेवन कर ले। मोक्ष मिलता है तो अमृत का भी त्याग कर सकता है। आत्मसिद्धि हो सकती है, सिद्ध परमात्मा बन सकता है, तो अमृत कोई बड़ी चीज नहीं है, छोड़ देगा। देव नहीं छोड़ सकते, ऐसा उनका शारीरिक एक परिस्थिति है जिस कारण से ये उसका त्याग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। चारित्र त्याग ही तो चारित्र है, अमृत का त्याग चारित्र है, त्याग नहीं हो सकता। असंगी पंचेंद्र जीव नियम से प्रथम गुणस्थान में ही मरण करता है, ये नियम है। मतलब ये हुआ कि पहले गुणस्थान से ऊपर उठने के लिए नियम से मन सहित होना अनिवार्य है, कलम लागू है। मन सहित हो तो ही पहले आदि गुणस्थान से आगे ऊपर उठ सकते हैं। ये दो कथन हो गए, संगी पंचेंद्री का और असंगी पंचेंद्री का। नरक में जाएगा तो प्रथम नरक तक, त्रिरंच गति में जाएगा तो सभी संख्यात वर्षायुष्क त्रिरंचों में जन्म लेगा, असंख्यात वर्षायुष्क में नहीं जाता। क्या कारण है? मन नहीं है। भोग भूमि में जाने के लिए भी यहां भी मन चाहिए, और वहां जाने के बाद तो नियम से मन सहित होकर के ही जन्म लेना है, वहां असंगी पंचेंद्री नहीं है। कर्म भूमि में यहां पर भी असंगी है और वहां पर जाकर के भी असंगी बन सकता है, संगी भी बन सकता है। पर भोग भूमि में यहां पर भी संगी चाहिए और वहां जाने के बाद भी संगी होकर के जन्म लेना अनिवार्य है। भवनत्रिक में जाने के योग्य शक्ति तो उसके पास है, पर उससे ज्यादा शक्ति नहीं। शक्ति है इसलिए जाता है, उतनी शक्ति है भवनत्रिक में जाने लायक या प्रथम नरक तक जाने लायक शक्ति है। पाप भी उतना ही कर सकता है जो पाप प्रथम नरक में जाने लायक होता है, और पुण्य भी उतना ही कर सकता है जो पुण्य अधिक से अधिक भवनत्रिक में जाने लायक पुण्य कर सकता है, उससे ज्यादा कैपेसिटी उसके पास नहीं है। मशीन ही उतनी है ना, अब गाड़ी खरीदा है, मशीन छोटी है तो गाड़ी तो उतनी ही दौड़ेगी कैपेसिटी के अनुसार, वो विमान तो नहीं है। आपका टू व्हीलर विमान का काम तो करेगा नहीं कभी भी, और उसकी रफ्तार तो उतनी ही रहेगी जितनी मशीन की कैपेसिटी है। तो असंगी पंचेंद्रिय की कैपेसिटी उतनी ही है, वो अधिक से अधिक प्रथम नरक तक दौड़ सकता है, हार्स पावर के ऊपर डिपेंड है। मनुष्य गति में भी कहा जाता है, देख लो, सभी संख्यात वर्षायुषिक मनुष्यों में जा सकता है, यानी समूर्छन मनुष्य भी बन सकता है, गर्भज मनुष्य भी बन सकता है, कर्म भूमि का मनुष्य बन सकता है, मिलिच खंड का मनुष्य बन सकता है, किंतु भोग भूमि का मनुष्य नहीं बन सकता। देवगति में भवनवासी और व्यंतरवासी में जा सकता है, दृष्टिभेद से भवनत्रिक में जा सकता है। ये हो गया। अब आठवें नंबर में आते हैं। अब यहाँ पर कथन अपर्याप्तक जीवों का है, एक साथ सबका कह दिया, संगी पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय सबका, एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक सबका, किसको ग्रहण करना, अपर्याप्तक जीवों को। अपर्याप्तक यानी लब्धि अपर्याप्तक, यानी जन्म के पश्चात श्वास के 18वें भाग में मरण करना अनिवार्य है, नियम से मरण होता है, अंतर्मूर्त काल की ही इनकी आयु होती है और निश्चित मरण होता है जाते ही, पर्याप्तियों को पूर्ण करने से पहले ही मरण करते हैं, ऐसे जीवों का कथन यहाँ है, एक साथ है, यानी सबके लिए एक ही नियम लागू है, कलम भेद नहीं है, सबको एक सा कलम लगता है, यहाँ सब सबको एक सा कानून है। क्या कानून है देखते, पंचेंद्री संघी अपर्याप्तक यानी लब्धि अपर्याप्तक, ब्रैकेट में दिया है, ये हो गया संघी में, संघी पंचेंद्री मन सहित है और यह लब्धि अपर्याप्तक है, और इनका अस्तित्व कहाँ रहता है मालूम तो है, कहाँ रहते हैं ये वासस्थान, मलमूत्र में रहते हैं, मनुष्यों के मलमूत्र में, त्रिरंचों के मलमूत्र में रहते हैं, संगी पंचेंद्री त्रिरंच के मलमूत्र में, संगी पंचेंद्री अपर्याप्तक जीव रहते हैं, और असंगी पंचेंद्री जीव के मलमूत्र में असंगी पंचेंद्री अपर्याप्तक जीव रहते हैं, ऐसा जो जिस जाति का जीव है उसी जाति के समूर्छन अपर्याप्तक जीव उसके मलमूत्र में पैदा होते हैं, और इनकी संख्या बहुत मात्रा में रहती है, बहुत होते हैं ये संगी पंचेंद्री एक है लेकिन उसके मलमूत्र में असंगी पंचेंद्री जीव संगी पंचेंद्री जीव बहुत सारे होते हैं। पहला वाला संगी पंचेंद्री अपर्याप्तक, दूसरा वाला पंचेंद्री असंगी अपर्याप्तक, ये कहाँ रहते हैं, असंगी पंचेंद्री के मलमूत्र में, असंगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव के मलमूत्र में, ये अपर्याप्तक हैं और वो पर्याप्तक है। जैसे एक तोता है, पोपट बोलते हैं, तोता असंगी है समझ लो, पंचेंद्री तो है, ये पर्याप्तक है क्या अपर्याप्तक, तोता पर्याप्तक है, अब इसके मलमूत्र में क्या रहेंगे, हाँ असंगी पंचेंद्री अपर्याप्तक जीव उत्पन्न होंगे के लाइक उसमें रहते हैं। जैसे अपन संगी पंचेंद्री मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्री मनुष्य हैं तो अपने मलमूत्र में कैसे रहेंगे मनुष्य, संगी पंचेंद्री अपर्याप्तक रहेंगे, हम पर्याप्तक हैं और अपने मलमूत्र में रहने वाले मनुष्य अपर्याप्तक हैं, ऐसा उदाहरण, वो भी मनुष्य हैं, उनकी आयु कम होती है और हमारी आयु ज्यादा होती है, उनकी आयु कितनी, श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु, नियम से उनको मरना पड़ता है। शरीर रचना नहीं हो पाती, मर जाते हैं। शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा, श्वासोश्वास, मन पर्याप्ति इत्यादि, ये जो छह पर्याप्तियां हैं, इन छह पर्याप्तियों के पूर्ण होने से पहले ही एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती और मर जाता है। शरीर वर्गनाओं को ग्रहण करता रहता है, इंद्रिय पर्याप्तियों को बनाने में लगा रहता है, भाषा पर्याप्ति भी रचना होती रहती है, सब एक साथ स्टार्ट होते हैं, किंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता और मरण होता है। और किधर जाएगा, वही तो पढ़ना है ना, यहाँ पर वही लगाया जा रहा है। तो कहाँ जाता है देख लो, पहले गुणस्थान में मरा ये कौन है, त्रिरंश में घटित कर रहे हैं हम, ये त्रिरंश गति में चल रहा है। पंचेंद्री संगी अपर्याप्तक लब्धि अपर्याप्तक त्रिरंश, और पंचेंद्री असौध्नी अपर्याप्तक त्रिरंश, पहले गुणस्थान में ही मरण होता है। असंगी ऐसे तो पहले में ही होगा, अब नरक गति में कहाँ जाएंगे, जा सकते नहीं। देखो इनके लिए अलग कलम लागू हुआ है, ये नरक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, देखो वो पर्याप्तक जीव असंगी, मन नहीं था, इंद्रियां तो थी, इंद्रियों से पाप हो सकता था, तो पांच इंद्रियों से ही वह पाप कर सकता है, तो पहले नरक तक जा सकता है। अब यहां पर इंद्रियां भी पूर्ण नहीं हुई और मन तो है ही नहीं, इसलिए वो नरक भी नहीं जाएगा, यानी प्रथम नरक तक जाने लायक भी पाप नहीं कर पाता, वो उसका मरण हो जाता है, होता है। देव गति में भी नहीं जाएगा और नरक गति में भी नहीं जाएगा, दो गति में जा सकता है, मनुष्य गति में जा सकता है और त्रिरंच गति में जा सकता है। उसमें भी क्या कहा है देख लो, त्रिरंच में सभी संख्यात वर्षायुष्य के त्रिरंच बन सकता है, यानी कर्म भूमि के प्रत्येक त्रिरंच अवस्था में जन्म ले सकता है, पर्याप्तक अवस्था, अपर्याप्तक अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, बादर अवस्था, ये केंद्रीय की अपेक्षा से सभी पर्यायों में, यानी त्रिरंच के कितने भेद थे पूर्व चार्ट में बताया था ना, 85 भेदों में से चार भेद निकाल दो, 81 भेदों में जन्म ले सकता, क्योंकि चार ये भोग भूमि के हैं, भोग भूमि के त्रिरंचों को छोड़कर बाकी सभी कर्म भूमि के त्रिरंचों में जन्म ले सकता है। मनुष्य बने तो कहाँ का मनुष्य बनता है, भोग भूमि का मनुष्य बनेगा क्या, नहीं बनेगा, कर्म भूमि के मनुष्यों में कहीं भी पैदा हो सकता है, जैसे त्रिरंच के मलमूत्र में है, असंगी पंचेंद्री या संगी पंचेंद्री त्रिरंच के उस पर्याप्तक के मलमूत्र में है, वहां से मरा पुनः वही जन्म लिया, ऐसा भी हो सकता है, उसी में मरा और उसी में जन्मा, या उसमें मरा और अन्य जो जीव था संगी पंचेंद्री जीव उसके मलमूत्र में भी जा करके यह अपर्याप्तक त्रिरंच बन करके जन्म ले सकता है। परंतु ऐसा नियम नहीं है, जैसे यहाँ संगी पंचेंद्री के मलमूत्र में संगी पंचेंद्री समूर्छन अवस्था में था, अपर्याप्तक अवस्था में था, यहाँ से मरण किया तो नियम से उसी संगी पंचेंद्री त्रिरंच के मलमूत्र में ही जन्म लेगा, ऐसा नियम नहीं, सभी यहाँ से मरण किया तो जाने के लिए सब रास्ते खुले हैं, परंतु नियम ये है संगी पंचेंद्री अपर्याप्तक पर्याप्तक त्रिरेंची के मलमूत्र में संगी पंचेंद्री पर्याप्तक त्रिरेंची के मलमूत्र में जो जीव उत्पन्न होते हैं वे नियम से संगी पंचेंद्री सम्मूर्छन अपर्याप्तक ही रहेंगे। को जितनी पर्याप्त को जितनी इंद्रियां हैं ना उतनी इंद्रियां उसको भी, पर वो इंद्रियां पूर्ण नहीं हो पाती, श्वास के 18 विभाग में वो मरण कर जाता, ऐसा नियम। मनुष्यों में जन्म ले तो देखो यहां पर त्रिरेंच था और अपर्याप्तक था, यहां से मरण किया जाकर के मनुष्य बन गर्भज मनुष्य बन करके जन्म लिया। गर्भज कहां का? कर्मभूमि का। उदाहरण के लिए असंगी पंचेंद्रिय कोई एक त्रिरेंच है, उसके मलमूत्र में असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक त्रिरेंच है, उससे मरा और यहां आकर के किसी के यहां जन्म लिया और उस परिवार में वो मनुष्य बन करके जन्म लिया। हो सकता है ऐसा। आया कहां से? अपर्याप्तक अवस्था से। बना क्या? पर्याप्तक, गर्भज बना, यहां मनुष्य बना। अब इसके मलमूत्र में क्या है? अपर्याप्तक जीव है, उत्पन्न होंगे। अब मान लो यह यही मनुष्य मरण किया, पर्याप्तक मनुष्य ने मरण किया, मान लो एक्सीडेंट हो गया, एकाएक मर गया, मरने के पश्चात आगामी गति को बांध करके ही मरेगा, तो पुनः मनुष्य गति को ही बांधा। और कैसे मनुष्य गति को बांधा? अपर्याप्तक मनुष्य बनने के गति को बांधा। अपर्याप्तक मनुष्य बन करके जन्म ले सकता है, स्वयं के स्वयं का जो ये शरीर है ये तो एक्सीडेंट में मर गया, अपने ही मलमूत्र में आकर के अपनी आत्मा जन्म ले सकती है। लो संसार कैसा है, विचिंतन करो संसार दशा का। तुरंत तुरंत टाइम थोड़ी लग सकता है, मरने में तो समय लगता है ना, आयु कर्म खिरने में थोड़ा समय लगता है। अंतर मुहूर्त में मरण के लिए अंतर मुहूर्त तो लगेगा ही, आयु कर्म की उदीर्ण होने के लिए अंतर मुहूर्त लगता है। भी अंतर मुहूर्त लो क्या बिगड़ रहा है? जाना तो वहां है, अपने शरीर में ही जन्म लेना है। जाने के लिए तो चार समय लगते हैं, आयु कर्म खत्म होने के बाद अधिक से अधिक चार समय में पहुंच जाएगा वहां। मनुष्य आयु को पहले से ही बांध लेता है, बांध करके तैयार रहता है, तो सम्मूर्छन बन करके जन्म लेना है, अपने ही शरीर में सम्मूर्छन बन करके जन्म लेना है। तो एक्सीडेंट में खुद मरा और मनुष्य आयु को तो पहले से ही बांधा था, और कितना अंतर मुहूर्त की आयु को बांध करके रखा है, श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु को बांध करके रखा है। यहां से मर गए और अपने ही मलमूत्र में जन्म लिए, ऐसे अपने ही मलमूत्र में जन्म ले सकते हैं, दूसरे के मलमूत्र में भी जाकर के जन्म ले सकते हैं। परिणाम के अनुसार आयु का बंध हो चुका है, अब जाना वहां निश्चित हो गया है। मनुष्य आयु को बांधा है, श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु है, ये तैयारी तो पहले से हो चुकी है, अब जाना बस वहां जा करके जन्म लेना है। ये बताया जा रहा है कि अपने ही शरीर में क्यों नहीं जन्म ले सकता, ले सकेगा क्या? नहीं, हम क्या हैं? कर्मभूमि के तो हैं, और यहां कर्मभूमि का कलम लागू है, कर्मभूमि में ही जाएगा। तो कर्म भूमि के हम मनुष्य हैं, अपने मलमूत्र में भी हम समूर्छन मनुष्य बन सकते हैं और किसी दूसरे के मलमूत्र में भी जन्म ले सकते हैं मनुष्य बनकर। सोचो कहां कहां ये सातमा ने जन्म नहीं लिया है, है? आप मलमूत्र विसर्जन करके आते हैं तो नाक पकड़ करके आते हैं, देखते तक नहीं, और मरण के पश्चात वहीं जन्म ले रहे वहीं जन्म हो सकता है। अब जाने के बाद क्या नाक पकड़ोगे वहां वो सब उसमें हो जाता है, उसकी चिंता मत करो। एक्सीडेंट के काल में सब वो हो जाता है, वो विभाजन भी हो जाता है और जल्दी जल्दी हो जाता है, तैयार फास्ट हो जाता है, वहां समय थोड़ी लगता है। अच्छा, ये देवगति में भी जाते नहीं, देखो अपर्याप्त जीव देवगति में नहीं जाते। अब पृथ्वी कायिक में देख लो, पृथ्वी कायिक में दो प्रकार के जीव हैं, बादर पृथ्वी कायिक और सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, और उसमें भी फिर दो भेद हो जाते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। यानी कैसा लगाना इसको, बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्तक जीव और बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्तक जीव, ऐसा एक भेद हो गया दो भेद हो गए। और इसी प्रकार सूक्ष्म के साथ लगाना, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पर्याप्तक जीव और सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अपर्याप्तक जीव, इस प्रकार चार भेद हो गए। ये चारों प्रकार के त्रियंश, ये पर्याप्तक हों चाहे अपर्याप्तक हों, इनका गुणस्थान तो पहला ही रहता है। और यदि इसी गुणस्थान इसी गुणस्थान में मरण भी होता है, मरण हो गया तो ये भी दो गति में नहीं जाते, नरक गति नहीं जाएंगे, देव गति नहीं जाएंगे, किंतु दो गति में जाकर वहाँ पर कर्म भूमि के संख्यात वर्षायुष के क्या लेना, कर्म भूमि का जीव। भूमि दो प्रकार की, भोग भूमि और कर्म भूमि, ये जीव नियम से चार प्रकार के पृथ्वी का एक जीव, पर्याप्तक अपर्याप्तक सूक्ष्म और बादर, ये कर्म भूमि के सब पर्यायों में जन्म ले सकते हैं। ने क्या क्या बन सकते हैं, त्रिरंच में जितने प्रकार के 81 भेद हैं, चार माइनस करो 81 भेदों में जन्म ले सकते हैं। और मनुष्यों में गर्भज भी बनते हैं और समूर्छन भी बन सकते हैं, कर्म भूमि में दोनों प्रकार के होते हैं। हो गया, आप चल रहे थे, जाते जाते एक कंकर पर पैर पड़ा तो कंकर टूट गया अपने पैर के नीचे दब करके, और वह बादर पृथ्वी का एक जीव था किंतु पर्याप्तक था, वो मर गया, मर गया और अपने ही मलमूत्र में जन्म लिया, मनुष्य गति में आया, त्रिरंच गति पृथ्वी का एक त्रिरंच गति, त्रिरंच गति से मरा, मनुष्यायु को बांधा, और वह भी कितने वर्ष का, पूर्व कोटि आयु को भी बांध सकता है और उत्कृष्ट आयु को पा करके मनुष्य गति में जन्म ले सकता है, और श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु को भी बांध सकता है मनुष्य आयु को, और आकर के अपने मलमूत्र में भी जन्म ले सकता है, यानी गर्भज भी हो सकता है और समूर्छन भी बन सकता है। का एक एक का ऐसा विचार करो तो सिर गर्म हो जाएगा आप हम कहाँ कहाँ होकर के आए हैं, विचित्र विचित्र भाव होंगे, ऐसे भाव हो जाए इसलिए स्वाध्याय चल रहा है। जन्म लेने के भाव नहीं होना चाहिए, मोक्ष जाने के भाव होना चाहिए, इसलिए स्वाध्याय चल रहा है। कौन पसेगा, ये ऑटोमेटिक विचार आएगा। मलमूत्र में जन्म ले रहे हैं तो कितना बड़ा दलदल है वहां। यही तो सोच के वैराग्य होना चाहिए। संसार शरीर भोगों से विरक्ति होना ही चाहिए। संस्कार डालो कि मुझे वैराग्य हो जाए और चतुर्गति से मुक्त होने के भाव जागृत होकर हम संयमी बन जाए। संयमी बनेंगे तो अधिक से अधिक 8 बार दलदल में जाओगे, कम से कम 3 बार दलदल में जाना पड़ेगा। क्यों आलसी बनकर के बैठना, पुरुषार्थ करना चाहिए। कब तक आलसी रहोगे? इसी आलस के कारण हम दलदल से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। संकल्प लेना हो जाएगा, थोड़ा प्रमाद छोड़ना पड़ता है। 3 भव बचाओ, 8 भव बचाओ, पार्क में आकर पार हो जाओ। आओ भी पार्क में और हो भी पार। अज्ञान है ये, अज्ञान, आत्मा अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं बन पा रहा है। इसी प्रकार जैसे पृथ्वी काय को लगाया, वैसे जल काय को भी 4 प्रकार से लगाना चाहिए। 4 प्रकार के जल काय के जीव कैसे बनते हैं लगाओ। जल कायिक बादर पर्याप्तक जीव और जल कायिक बादर अपर्याप्तक जीव, पहले 2 बना लो। बादर को 2 प्रकार से बना लो। पहले जल कायिक बादर पर्याप्तक, जल कायिक बादर अपर्याप्तक। इसी प्रकार जल कायिक सूक्ष्म पर्याप्तक और जल कायिक सूक्ष्म अपर्याप्तक जीव, ये 4 प्रकार के जल कायिक जीव मरण करके 2 ही गति में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तिरंच और मनुष्य 2 ही गति में जाते हैं। तिरंचों में 81 प्रकार के तिरंच हो सकते हैं। उसमें पर्याप्तक भी हो सकते हैं और अपर्याप्तक भी हो सकते हैं, और सब में अपर्याप्तक पर्याप्तक भेद है। सिर्फ भोगभूमि के जीवों को छोड़ो, वहां पर्याप्तक अपर्याप्तक ऐसा 2 भेद नहीं है, वहां पर नियम से 1 ही भेद है। भोगभूमि के जीव नियम से पर्याप्तक ही होते हैं, अपर्याप्तक नहीं होते। क्यों नहीं होते बोलो? भोगभूमि में अपर्याप्तक जीव क्यों नहीं होते? हाँ, उनका मलमूत्र ही नहीं है तो फिर उत्पन्न होने का सवाल भी नहीं है। मलमूत्र रहित होता है उनका शरीर, तिरंचों का भी और मनुष्यों का भी। सभी संख्यात वर्षायुष्क तिरंचों में, सभी संख्यात वर्षायुष्क मनुष्यों में ये जल का एक 4 प्रकार के जीव जन्म ले सकते हैं, किंतु भोगभूमि के मनुष्यों में या भोगभूमि के तिरंचों में जन्म नहीं लेते। इसी प्रकार वनस्पति में भी लगाना आवश्यक है। 4 भेद करिए। वनस्पति यानी निगोद वनस्पति, वनस्पति यानी साधारण वनस्पति। यहाँ निगोद लिखा है, निगोद लिखो या साधारण लिखो एक ही बात है। वनस्पति निगोद बादर पर्याप्तक और अपर्याप्तक, और वनस्पति सूक्ष्म पर्याप्तक और अपर्याप्तक, इस प्रकार 4 भेद हो गए। ये 4ों प्रकार के निगोदी जीव सभी संख्यात वर्षायुष्क तिरेंज गति में और सभी संख्यात वर्षायुष्क मनुष्य गति में जन्म ले सकते हैं, वही नियम लागू हो गया सबको। कैसे कैसे देखो, ये सब कलम है, इस कलम को जानेंगे तो वकील बन सकते आप परमार्थ क्षेत्र के। और लड़ सकते हैं अपने कर्मों से वकील बनकर, पहले कलम को जाने और कलम लागू करके ही संयम की साधना करें। साधना करने के लिए भी कलमों का ज्ञान चाहिए कि नहीं? हाँ, तत्संबंधी पाप न हो सके। हाँ, ज्ञानी आत्मा को सब पता रहता है, यदि मैं मनुष्य हूं तो कहां कहां जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं, सब कलम का ज्ञान रहता है। विधान है ये जीव सिद्धांत का संविधान, ये एकेंद्री है। तो इनका नियम से पहला गुणस्थान ही होता है, लिख दिया संविधान में, इनको दूसरा नहीं होगा। ये नरक गति में बिल्कुल नहीं जाते, ये कलम हो गया। देव गति में नहीं जाते, ये भी कलम लागू कर दिया। अब जाएंगे तो भोग भूमि में भी नहीं जाएंगे, ये भी कलम लागू हो गया। अब जाने के लिए एक रास्ता खोल देते। अब संख्यात वर्षायुष्क में 81 प्रकार के त्रेंचों में जाओ, कहीं भी जाओ छुट्टी, परंतु आयु कर्म जितना होता है उसके आधार से जाएगा। पर्याप्तक बनने के लिए आयु अधिक चाहिए, अपर्याप्तक बनने के लिए श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु चाहिए। वनस्पति हो गया। द्विइंद्री में भी दो प्रकार के जीव हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तीन इंद्री में भी दो प्रकार के जीव हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। चतुरेंद्रीय में जो दो प्रकार के चतुरेंद्रीय जीव हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तो ये अपर्याप्तक जीव कहाँ रहते हैं, प्रश्न उठता है। सोचो, द्विइंद्री तीन इंद्री ये विकलत्रय जीव हैं, ये विकलत्रय जीव जो रहते हैं अपर्याप्तक द्विइंद्री जीव कहाँ रहते हैं। पर्याप्तक जीव का मतलब ये हो गया कि कोई एक कछुआ, उसको मराठी में क्या बोलते, कासव बोलते, कासव पंचेंद्री हो गया, वो कासव बोलते कछुए को, द्विइंद्री जीव। शंख है समझ लो, शंख का कीड़ा, वो पीठ पर शंख लेकर के चलता रहता है, गोगल गाय बोलते आप लोग, वो द्विइंद्री है। तो वो पर्याप्तक है, वो जो चल रहा है वो जीव आत्मा पर्याप्तक है। ये उसके मलमूत्र में उत्पन्न होने वाले द्विइंद्रिय अपर्याप्तक जीव होते हैं, उनकी आयु श्वास के 18वें भाग प्रमाण होने से वो उत्पन्न नहीं हो पाते और मर जाते हैं, उसके मलमूत्र में रहते हैं। वो जो पीछे से छोड़ता मलमूत्र को आता है ना, तो उसमें रहते हैं। केचुआ शंख का कीड़ा दिखा है कि नहीं, बस वो भी द्विइंद्री, केचुआ भी द्विइंद्री, सीप देखा है कि नहीं, वो भी द्विइंद्री। द्विइंद्री जीव बहुत प्रकार के हैं। तो ये जीव सब जो आंखों से दिखते हैं ये सब पर्याप्तक हैं, और इनका जो मलमूत्र होता है उसमें उत्पन्न होने वाले जीव अपर्याप्तक, उनकी आयु श्वास के 18वें भाग अंतर्मूर्त आयु रहती है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले ही मरण करते। तो यहां पर एकेंद्री जीवों को कैसे लगाएंगे, जैसे पृथ्वी का एक जल का एक पर्याप्त भी बताया और अपर्याप्त भी बताया, तो अपर्याप्त कहां रहते हैं, उन्हीं के शरीर के आश्रय से, उन्हीं के शरीर के आश्रय से। उनके मलमूत्र तो होता नहीं, लेकिन शरीर ही योनि स्थान बन जाता है। पर्याप्तक पृथ्वी का एक पर्याप्तक जल का एक पर्याप्तक अग्नि का एक नहीं है, यहाँ तीन ही लिया है, पर्याप्तक पृथ्वी, पर्याप्तक जल, पर्याप्तक वनस्पति। हाँ, ये अलग बताया, उनको अलग कर दिया क्योंकि उस कलम वहाँ पर अलग लागू होना है, इसलिए अलग कर दिया। उनका कलम अलग है इसलिए उनको हटा दिया वहाँ से, इनके बीच में नहीं है वो। तो हम ये पूछते हैं कि पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, इनका शरीर तो होता है ना, इनके शरीर में जो योनि स्थान हैं उन योनि स्थानों में अपर्याप्तक बन करके जन्म लेने के योनि स्थान भी हैं, जो जन्म लेते ही वह मरण करता है। तो उसका शरीर ही उसका अपर्याप्तक जीव की उत्पत्ति का कारण होता है। ये हो गया, ये सभी जीव एक ही नियम लागू कर दिया है कि तिरंच गति में ही जाते हैं, मनुष्य गति में ही जाते हैं, कर्म भूमि में ही जाते हैं, भोग भूमि में नहीं जाते, देव गति में और नरक गति नहीं जाते। इस प्रकार ये हो गया। अब इसमें से जो अलग किया है उसको कल देखेंगे, अग्नि कायिक और वायु कायिक। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद। के बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन, उनको ये पता नहीं था कि आत्मा का पुनर्जन्म।